ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सुदृढ़ स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और यह 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। समारोह में भाग लेने के लिए नेता राजधानी पहुंचने लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कुमार जगनौत, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे भी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी हैं। सोमवार को सवेरे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 78 सदस्यों वाले विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के 2 केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में नेता का औपचारिक रूप से चयन किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ने स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव जीत लिया है। उपचुनाव 27 मई को हुआ और मतों की गिनती 5 जून को हुई थी। कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वदलीय से प्रस्ताव पारित कर पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष का नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कार्यसमिति की बैठक के बाद कहा कि कार्यसमिति का मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव से कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य स्तर पर चुनाव में प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करेगी। निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचन आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले एक ही चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडरग्रेजुएट 2024 देशभर में पूरी तरह से पारदर्शी रही है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस परीक्षा में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में इस समय भारत और जर्मनी का मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। कल भारत का मुकाबला मेजबान ब्रिटेन से होगा। भारतीय पुरुष टीम तालिका में चौथे नंबर पर है। टीम ने 14 मैचों में 24 अंक हासिल किए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वीटेक का सामना इटली की जैस्मिन पाउलिनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।